నేర్చుకోవడం జీ భూజిందా స్వామి దుఃఖకో కమ్ముఖో వైలా సుగైం సమాయ
नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता
बोलो
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा
तो भी पढ़ तो पानी रहे वे भी तो पढ़त जाए।
आचार्या सिंजिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाच का मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरतन प्रभा भास्वद पाद नखेन्दवः प्रवचनाम् दीन्दवः स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठुका साधुवा स्तुत्या योगी जनैश्च पञ्च गुरुवः कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यग् दर्शन बोध व्रतममलम् रत्नत्रयम् पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत् नगराधिनाथ जिनपत् युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलम् सुधा सचैत्यमखलम् चैत्यालयम् श्यालयम् प्रोक्तम् चात्रिविधम् चतुर्विधममी कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नावेयादिजिना प्रशस्तवदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो
ये
चक्रिनो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा
लांगलधरा
सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथितास्ति षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु मे मंगलम् ये सर्वौषधिर्ध्येयः सुतपसाम् प्रद्युम्न गता पञ्चये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला चाष्टो वियचारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु मे मंगलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृषु विश्वाकारगिनौ गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु मे मंगलम् कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपतेः संवेदशैलेर्हताम् शेषानामपि चोर्जयन्तशिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु मे मंगलम् योगर्भावतरोत्सवो भगवताम् जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभा या कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्पादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदम् सौभाग्यसम्पत्करम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियः तीर्थङ्कराणामुसः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि।
इस मंगलाष्टक में अपन सभी से अपने मंगल की कामना कर रहे हैं, अपने पापों का क्षय करने और कल्याण करने के लिए ये सब हमारे लिए निमित्त हैं। सबसे पहले हमने पांचों परमेष्ठियों को अपने मंगल में निमित्त बनाया, फिर कह रहे हैं कि नौ देवता भी अर्थात पांच परमेष्ठी जिन धर्म जिन वाणी और जिनालय और जिन बिंब ये नौ देवता भी हमारे कल्याण में निमित्त बने और चौबीसों तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को आदि लेकर के महावीर पर्यंत और भरत चक्रवर्ती आदि बारह चक्रवर्ती नौ नारायण नौ प्रतिनारायण और नौ ही बलभद्र ऐसे सब जितने भी तीनों कालों में त्रेसठ शलाका पुरुष हुए हैं वे सब भी मेरे लिए मंगल करें। फिर सातों रिद्धियों को धारण करने वाले जो मुनिजन हैं वे भी हमारे कल्याण में निमित्त बने। इतनी चर्चा अपन ने कर ली। अब कह रहे हैं कि जितने भी जिनालय हैं, जिनालय दो प्रकार के होते हैं, जिनालय कहो या चैत्यालय कहो। मंदिर शब्द तो बाद में आया है, वास्तव में तो जहाँ जिनबिंब होता उसे जिनालय कहते हैं, या कि जिनबिंब को ही चैत्य कहते हैं और चैत्य जहाँ रहता उसे चैत्यालय बोलते हैं। तो जिनालय चैत्यालय और फिर मंदिर शब्द जो है जिन मंदिर ऐसा जोड़ देते हैं। मंदिर तो सामान्य रूप से सभी लोग कहते हैं लेकिन अपने यहाँ पर विशेष रूप से जिनालय और चैत्यालय ऐसा या जिन मंदिर, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए और दूसरे जो अनादिकाल से शाश्वत हैं, और जो अनादिकाल से हैं वे अकृत्रिम जिनालय कहलाते हैं और जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं वे सब कृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों के अपन अर्घ भी चढ़ाते हैं, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसकी मैं लिस्ट नहीं ला पाया, एक अच्छी वो निकली है लिस्ट जिसमें सभी की संख्या अलग अलग दी हुई है, एक चार्ट है। खैर मैं फिर बता दूंगा इसमें, अभी तो सिर्फ इनके संख्या नहीं है, अभी तो सामान्य रूप से मंगल की कामना कर रहे हैं। ज्योतिर व्यंतर भावना मर ग्रहे, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव, और अमर का मतलब है वैमानिक देव, चारों आ गए इसमें। ज्योतिर व्यंतर भावना अमर इन सब में, इन सब के आवासों में ये चारों प्रकार के देव हैं। इन चारों निकायों के देवों के जो निवास स्थान हैं उनमें जिनालय बने हैं, अकृत्रिम जिनालय बने हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और विशेषता ये है कि एक एक जिनालय में 108 108 प्रतिमाएं होती हैं, हाँ, और एक एक प्रतिमा 500 धनुष वाली अवगाहना की है। 500 धनुष मतलब एक धनुष कितना होता, चार हाथ का एक धनुष होता है और एक हाथ लगभग 1.5 फीट का मान लो तो 6 फीट के मायने हो गए एक धनुष। ऐसे 500 धनुष मतलब 30,000 फीट, इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना की 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में होती हैं और ये असंख्यात हैं। ज्योतिर्मंडल में तो असंख्यात जिनालय, इस तरह से चारों निकाय के देवों के यहाँ
और देवों के लिए नियम है कि जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं और सबसे पहले स्नान करके आभूषण धारण करके सबसे जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए जाएंगे ही। अगर मिथ्या दृष्टि है तो भी जाएगा कुल देवता मान करके, सम्यक दृष्टि है तो सच्चे देव मान करके और उनकी पूजा करेंगे। और कह रहे हैं जल जम्बू शालमली चैत्य शाखीसु चथा दक्षार रूप्यादृशु, ये सब जो है मेरु और कुलाचल इत्यादि हैं, तो जितने भी मेरु हैं पांचों मेरु कुलाचल जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष, इन पर जो है ये चैत वृक्ष कहलाते हैं, इन पर भी जिनालय हैं। वक्षार और विजयार्थ की श्रेणियों में विजयार्थ पर्वत पर और इश्वाकार पर्वत पर कुंडल गिरऊचा नंदीश्वर दीप और मानुसोत्तर पर्वत, इसी के साथ में इन्होंने रुचिकवर पर्वत भी दिया है। जहाँ जहाँ पर भी अकृत्रिम जिनालय हैं वे सब जो है हमारे पापों का क्षय करें, हमारे लिए मंगलकारी होवें। इस तरह से अपन ने सभी अकृत्रिम जिनालयों के लिए भी अपने मंगल में, अगर अपन चाहें तो इनको अपने मंगल में निमित्त बना सकते हैं, कहना ये चाह रहे हैं निमित्त बने, ऐसी भावना भा रहे हैं अपन। फिर अब देखो 24 तीर्थंकर जहाँ जहाँ से मोक्ष गए हैं वे सब निर्वाण की स्थलियाँ हैं, वे भी हमारे लिए कल्याण में निमित्त बने, हमारा मंगल करें। वैसे तो सभी तीर्थंकर सम्मेत शिखर से ही मोक्ष जाते हैं, अयोध्या में पैदा होते हैं, लेकिन इस बार हुंडाओ सर्पनी की वजह से 20 तीर्थंकर शिखर जी से गए, बाकी 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से गए, तो ऐसे निर्वाण क्षेत्र कितने हो गए, 5 हो गए। एक तो सम्मेत शिखर है ही और 4 और भगवान अलग अलग चले गए, तो 5 हो गए विशेष रूप से तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल। सामान्य जीवों के निर्वाण स्थल अलग हैं और तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल तो विशेष रूप से 5 हैं। उन सब के लिए भी यहाँ पर अपने मंगल में निमित्त मान रहे हैं। कैलाशे कैलाश पर्वत किसकी निर्वाण भूमि है, ऋषभ देव भगवान की, वृषभस्य लिखा ही हुआ है, कैलाशे वृषभस्य निर्वृति मही अर्थात निर्वाण की भूमि। और वीरस्य पावापुरी महावीर भगवान की निर्वाण भूमि पावापुरी है। चंपायाम वसुपूज सज्जने, वसुपूज भगवान चंपापुरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। और संवेद शैले अरहताम शेषाणाम अपि, और शेष जो हैं वे सब 20 तीर्थंकर संवेद शिखर से गए और ऊर्जयंत शिखरे नैमीश्वरस्य अरहतो, और नैमिनाथ भगवान तो ऊर्जयंत पर्वत, उसको गिरनार भी बोलते हैं, हैं? तो ऐसे गिरनार पर्वत से नैमिनाथ भगवान गए, ठीक है ना। और शेष तीर्थंकर 20 जो है संवेद शिखर से गए। क्या कह रहे हैं, निर्वाणा वनयः अवनयः अवनी, अवनी मतलब धरती भूमि, तो ये निर्वाण की अवनी है अर्थात निर्वाण की भूमि है। प्रसिद्ध विभा, इनका वैभव तो प्रसिद्ध है, अतिशय और वैभव प्रसिद्ध है, ये सब हमारे लिए निर्वाण की भूमियाँ भी मंगलकारी हों, हमारे कल्याण करने में निमित्त बने। अपन इनका भी अर्घ चढ़ाते हैं रोज। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थापना और नाम, ये 6 प्रकार की पूजा होती, उसमें से ये क्षेत्र की पूजा है, काल की पूजा है। जैसे अपन त्रयोदशी के दिन भगवान को क्या हुआ, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को निर्वाण, तो उसका भी अर्घ चढ़ाते, 5 कल्याण की तिथियों का अर्घ चढ़ाते ना, वो सब काल पूजा है। और ये जो विभिन्न भूमियों का नाम बोलकर चढ़ाते वो सब कहलाएगी क्षेत्र पूजा, ये भी आवश्यक है, रोज करते हैं अपन। 2 और रह गए, दोनों कर दें क्या, कर देते हैं है? हाँ, यो अब इतना और रहा कि जो तीर्थंकर हैं उनके 5 कल्याणक कल्याणकारी ही हैं, देखा जाए उनका नाम ही कल्याणक है, अर्थात जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो वो कल्याणक। कल्याणक जो है वो विशिष्ट उत्सव हैं। भगवान के गर्भ में आते समय भी उत्सव मनाया जाता है, भगवान जन्म लेते हैं तब भी उत्सव मनाया जाता, जब वे दीक्षा लेते हैं तब भी उत्सव मनाया जाता, वो भी कौन, देवों के द्वारा, सबसे पहले देव और फिर बाद में सब मनुष्य भी शामिल होते हैं उसमें। ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य नहीं मनाते हैं, देवों के साथ साथ मनुष्य भी शामिल, पर सबसे पहले देव लोग आकर के मनाते हैं। फिर जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तब भी उत्सव मनाया जाता, जब भगवान को निर्वाण हो जाता तब भी उत्सव मनाया जाता। ये पांचों अवसर उनके पांच कल्याणक कहलाते हैं। क्यों है कल्याणकारी? क्योंकि अब फिर से माँ के पेट में आकर के आना नहीं पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बार अब दीक्षा, आखिरी बार दीक्षा ले रहे हैं, केवल ज्ञान और निर्वाण वो तो एक ही बार प्राप्त होता, बार बार थोड़ी प्राप्त होता। तो इसलिए ये स्वयं में भी कल्याणकारी हैं और जीव भी इसके माध्यम से अपना कल्याण करते। तो कह रहे हैं यो गर्भाव सरोत सबो भगवताम, जो गर्भ के अवसर पर भगवान का उत्सव हुआ वो गर्भ कल्याणक भी मेरे लिए कल्याणकारी होवे। बताओ उस गर्भ कल्याणक से अपन को क्या मिलने वाला? कहते ये संदेश मिलता है कि ऐसे जन्म लेओ जिससे कि फिर बार बार जन्म मरण ना करना पड़े। इसलिए और जन्माभिषेक उत्सव भगवान के जन्म के अवसर पर जो सौधर्म इंद्र के द्वारा पांडुक शिला पर ले जा करके सुमेरु पर्वत पर वहाँ अभिषेक होता है, वो जन्माभिषेक वो जन्म कल्याणक है। यो जाता परिनिष्क्रमीण, परिनिष्क्रमण का मतलब ग्रह त्याग कर देना, उसको परिनिष्क्रमण बोलते हैं। अर्थात दीक्षा के लिए भगवान का वन चले जाना, जंगल चले जाना, वो परिनिष्क्रमण है, उसको कहते हैं दीक्षा कल्याणक। यह केवल ज्ञान भाग, और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञान कल्याणक है। और फिर कैवल्यपुरा प्रवेश, जब मोक्ष में प्रवेश हो गया, कैवल्यपुर मतलब मोक्षपुरी, तो मोक्ष जब भगवान का हो गया तब उसकी जो महिमा संपादिता है, स्वर्गी भी स्वर्ग के देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा आकर के इन सब पांचों अवसरों पर जो भगवान की महिमा बताई गई है, कल्याणानी चतानी पंच सततम, वे पांचों कल्याणक निरंतर मेरे लिए कल्याणकारी हों, अर्थात मेरे मंगल में निमित्त बने। तो अपन पांचों कल्याणकों के भी अर्घ चढ़ाते हैं रोज भगवान के लिए। वो काल पूजा, इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकम इदम, इस तरह से यह जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा और अपने मंगल की कामना करने वाला आठ पदों से जो मंगलाष्टक है वह सौभाग्य संपत्ति कर्म, वो कैसा है? सौभाग्य और संपत्ति दोनों को देने वाला है। हैं, मांग नहीं रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं समझना कि हम मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, वो तो मिलेगी। पेड़ के नीचे जाओ तो छाया मांगनी पड़ती क्या कि थोड़ी छाया दे देना? वो तो है ही, आप जाओ घर तो उसके नीचे। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि हम जब भगवान से मंगल की कामना करते हैं तो अपने शुभ परिणामों के द्वारा हमारा मंगल हो ही जाता, भगवान मंगल करें और चाहे नहीं करें, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है, वो अपने आप में लीन रहते हैं। आप उनके माध्यम से अपना कल्याण करो तो करो। कल्याण येसु महोत्सवेशु सुधिया, और जो सुधी लोग, सुधिया मतलब बुद्धिमान, क्या करते हैं? कल्याणेशु महोत्सवेशु, पंच कल्याणक के महोत्सव के अवसर पर, और तीर्थंकरा नाम उषा, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के, और उषा मतलब प्रभात काल, उषा वेला प्रभात काल में, ये श्रणवंती पठंती तैश्च सुजनई, जो सज्जन पुरुष इसके लिए सुनते हैं और पढ़ते हैं वे किस चीज को प्राप्त करते? कहते धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी आश्रय थे, वे धर्म अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ हैं, इनके साथ साथ वे लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, फिर पश्चात निर्वाण लक्ष्मी रपि, यहाँ पर लक्ष्मी के मायने ले लिया अनंत चतुष्टय है, पहले अरहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई और फिर बाद में निर्वाण लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी भी उनको प्राप्त हो जाती। इतना बड़ा लालच दे रहे हैं, अब तो जरूर पढ़ना चाहिए इसको। वो कह रहे हैं कि अगर इसको पढ़ोगे और सुनोगे भी अगर, तो भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो सकती। छोटी मोटी चीज क्या मांगना, जब मांगो तो फिर अच्छे ठाट से मांगो कि पूरा ही पूरा काम हो एक बार में, क्या थोड़ा मोड़ा क्या मांगना, देव तो फिर पूरा ही देव। तो ऐसा मांग लिया, अपन भगवान से मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं, हम आप जैसे बन जावे, हमको भी मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। इस तरह ये अपन ने पूरा मंगलाष्टक हो गया। एक प्रश्न है आज, प्रश्न तो है ही नहीं।
तो जल्दी खत्म हो जाएगा।
इन शब्दों का अर्थ अवश्य इकट्ठे रखे थे क्या? इन शब्दों का अर्थ अवश्य अर्थ सहित बताने का कष्ट करें। निष्प्रह, इस प्रह बोलते हैं इच्छा को। किसको बोलते हैं? इच्छा। अपने भीतर इच्छा जागृत होती वो कहलाती इस प्रह, संस्कृत शब्द है। और निष्प्रह अर्थात जिसके कोई इच्छा नहीं, डिजायरलेस। एक फॉर्मूला बनाया था विनोबा ने, ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन। ऐसा फॉर्मूला, इक्वेशन बना दिया उन्होंने। आदमी में से अगर इच्छाएं निकल जाए तो वही तो भगवान बन जाएगा। निष्प्रह हो जाए, कोई इच्छा नहीं है संसार की, किसी भी भौतिक सुख की कामना नहीं होना, ये कहलाता है निष्प्रह। और छद्मस्त, छद्मी स्था छद्मस्ता, छद्म के मायने अपने आप, ये टेक्निकल वर्ड है। निष्प्रह शब्द तो संस्कृत की डिक्शनरी मिल जाएगा, लेकिन छद्मस्त शब्द तो जैन डिक्शनरी में ही मिलेगा। छद्म के मायने होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण। क्या अर्थ हुआ छद्म के मायने? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। जब जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म लगे हैं वो सब छद्मस्त हैं। छद्मस्त का दूसरा अर्थ भी है संसारस्थ, जो संसार में स्थित हैं। जब तक चार घातिया कर्म लगे हैं तब तक अपन सब संसारी कहलाएंगे, और जैसे ही चार घातिया कर्म नष्ट हुए तो फिर केवली कहलाएंगे। छद्मस्त और केवली, छद्मस्त कहलाते हैं जो संसार में हैं, अर्थात जिनके ज्ञान आवरण दर्शन आवरण अभी लगे हुए हैं। छद्मे स्था छद्मस्था, अपन सब छद्मस्त कहलाएंगे। ऐसा सामान्य सुनने में आया होगा आपके छद्मस्त, तो छद्मस्त मतलब सब संसारी। और अर्थ क्या हुआ? जिनके अभी ज्ञान आवरण दर्शनाकरण वर्ण कर्म मौजूद हैं, हैं? वो तो सब उसी में आ गए। छद्म के मायने विशेष रूप से ज्ञानावरण और दर्शनावरण लिया हुआ जी है। हाँ, ऐसा अर्थ तो नहीं आया सामान्य। बारहवें गुण स्थान तक जो है सभी छद्मस्त हैं, इसलिए ऐसा भी अर्थ ले लो कि छद्मस्त मतलब अपन कहने लगते ना भैया अब हम अवथोड़ो ज्ञान है, हम छद्मस्त हैं, ऐसा कह देते हैं। छद्मस्त है मतलब हमें थोड़ी केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान जिनको होता है वे सही बात जानते हैं, हम तो छद्मस्त हैं अर्थात अभी हम अज्ञानी हैं। इस अर्थ में भी छद्मस्त का अर्थ ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं समझना। छद्मस्त तो बारहवें गुण स्थान तक के जीव हैं, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ उसके पहले पहले सब अज्ञानी। एक परिभाषा ये है, अज्ञानी की परिभाषाएं अलग अलग हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अज्ञानी कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है? जिसे सम्यक ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है अज्ञानी की? जो अपना आत्म कल्याण नहीं करता वो भी अज्ञानी है। और फिर कहते कि केवल ज्ञानी के सामने तो सभी अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी के अर्थ। तो छद्मस्त के मायने अज्ञानी भी कहो तो कोई हर्जा नहीं, पर छद्मस्त के मायने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म भी लगे हुए हैं जिनके। मेटल की चूड़ियां और प्लास्टिक की चूड़ियां, इनको पहनकर आहार दे सकते हैं क्या? देखो भैया, ये जो है अब आप जैसा करना हो, देखो अकेले लाख इत्यादि से बचना चाहिए। लाख में बहुत जीव हिंसा होती है आजकल, जो है वो लाख की भी चूड़ियां बनने लगी। तो कम से कम आहार के समय तो अपन उनका उपयोग ना करें, इतना ही। अब वैसे तो सोने के जेवर भी बनते हैं, उनके भीतर भी लाख रहती है। अब क्या करोगे आप, कैसे बचोगे आप? लेकिन कम से कम प्योर जो लाख है उसके लिए, वो तो क्योंकि संपर्क में आ रहा, बार बार छूने में आएगा, तो कम से कम उससे तो बचना चाहिए, और बाकी में तो ठीक है। ये तो प्रश्न का जवाब देना जरूरी है क्या? जिनके स्वर मतलब क्या बोलते हैं अपन लोग, स्वर्गवास हो गया, किसी के परिवार में माँ और माँ अकेली रह गई तो फिर वो माँ जो है वो श्रृंगार करेगी कि नहीं, ये तो सबको विदित है कि किस बात का श्रृंगार। बिंदी, हाँ नहीं ठीक है, देखो आप इतनी जल्दी घबरा जाती, मैं प्रश्न का, जबकि मेरे पास प्रश्न आया, आपके पास आता तो आप तो बिल्कुल उस व्यक्ति को पता नहीं क्या कर लेते कि क्या पूछ रहे हो तुम। अपन को ऐसा लगने लगता जैसे अपन ही अज्ञानी है और तो सब अज्ञानी है एकदम, लेकिन पूछने वाले ने पूछा, उसने कहीं देखा होगा। कई जगह पर ऐसा होता है कि मरण हो जाने के बाद भी और श्रृंगार की सामग्री का त्याग नहीं करते, थोड़ा बहुत तो पहने ही रहते हैं, हाथ में चूड़ियां पहने रहते हैं। वो पूछ रहे हैं क्या नाक में पहनेंगे, कान में, या कि बिंदी लगा सकते कि नहीं। तो भैया जहां जैसी मान्यता हो वैसा, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो सामाजिक मान्यता है, समाज में जैसा प्रचलन है वैसा कर लेना चाहिए। जवाब तो ये देना पड़ेगा, अकेले टाला थोड़ी जा सकता। आज यही चीज है, छोटे बच्चे मैंने देख लिया, बच्चे खूब सारी बातें पूछना चाहते हैं और पूछते भी हैं घर में परिवारजनों से, लेकिन उनके पास या तो समय नहीं है बताने का, और या फिर उनको खुद ही नहीं मालूम क्या बताएं। सो डांट डपट के, अरे चलो क्या पूछते हो तुम, कुछ आता जाता है ही नहीं। वो पूछना चाहते धर्म की बातें और अपन खुद उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते नहीं, या तो समय नहीं है कि खुद अपन को ज्ञान नहीं है। पर बताना चाहिए सारी चीजें, इन चीजों के बारे में भी जान, क्यों आप कोई पूछ ले मैं आपसे कि क्यों ऐसा। पुरुष को भी ऐसा करना चाहिए, फिर हमारी मां नहीं रही तो पिता को भी ऐसा करना चाहिए कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, फिर शेविंग नहीं करवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, क्या करना, फिर कुछ ऐसा करना चाहिए, क्या कारण क्या है। देखना, पिता मर गए हैं तो माँ कुछ भी नहीं करेगी। बेटा पूछ सकता है कि पिता नहीं रहे हैं तो माँ तो जो है कुछ नहीं करे, टिपकी भी नहीं लगाए और फलाना नहीं करे, और अगर माँ नहीं रहे और पिताजी तो भी दूसरी शादी कर लेंगे। देखो तो संसार इसके लिए छूट है। तो ये प्रश्न कर सकते, अब आपके पास क्या उत्तर है इसको, यही उत्तर देंगे भैया समाज ने जैसी व्यवस्था बनाई है वैसा है, समाज ने कोई सोच विचार की बनाई होगी उस तरह की व्यवस्था, और क्या उत्तर दे सकते हैं आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे नहीं सकते। आप टाल मटूल कर सकते हैं इन प्रश्नों के जवाबों को देने में, लेकिन आपके पास कोई बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक कोई इसका जवाब नहीं है इन चीजों का, बस ये मान्यताएं हैं, और मान्यताएं कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचाती, ये ध्यान रखना। मान्यता और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। जैसे कि कैसे फर्क होता, जैसे कि मान्यता है कि मैं पुरुष हूं इसलिए घर गृहस्थी के काम नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है, क्या मैं घर गृहस्थी का काम करने में सक्षम नहीं हूं क्या। सच्चाई तो है कि मैं सक्षम हूं, लेकिन मान्यता क्या है, अरे भैया तुम रोटी नहीं बना सकते, क्या बनाते नहीं बनती। सच्चाई तो है कि बनाते बनती है, लेकिन मान्यता है कि आप नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे तो ये तो काम जो है दूसरों का है। ऐसा मान्यता और सच्चाई में बहुत फर्क रहता है। जो लोग मान्यता, जो जिस समाज में मान्यताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है सच्चाई की अपेक्षा, उस समाज का कभी विकास नहीं होता, ये ध्यान रखना। कमंडल का रंग काला क्यों होता, क्योंकि मुनि महाराज जी ने कमंडल का रंग, उनके कमंडल का रंग काला इसलिए है क्योंकि अब काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला, काले रंग में सब रंग समा गए, सारी रंगीनी खो गई उनकी, तब जाकर के वो यहाँ पर आ पाए हैं, ये प्रतीक है उस बात का, काले रंग का। छोटे बच्चे आहार दे सकते हैं क्या, ले लेते हैं हम छोटे बच्चों से भी ले लेते, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलो, पिताजी के हाथ में हाथ लगा लो और दे लो, तुम इतने ऊंचे नहीं उठ पाओगे कि हमें दे पाओ, इसलिए दे लो। अभी से जो है संस्कार पड़ेंगे भैया, आगे जाकर के इन्हीं को तो करना है सब, और कौन करने वाला, आपको अपने पिताजी से मिला था सो आपने निभाई, अब आप इनको सिखा के जाएंगे सो ये आगे तक चलाएंगे, पंचम काल के अंत तक चलना है, श्रावक श्राविकाएं ऐसे ही तो रहेंगे, संख्या कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत बच्चे हैं अच्छा बताओ, पूरे पूरे जयपुर में 1% बच्चे होंगे जिनको की आहार देने की रुचि होगी, 1% देख लो आप, जिनको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलेगी
नहीं तो बे अपनी मस्ती और बे अपने टेलीविजन और बे अपनी